जग सारा रोगी और जिन दना जाना जग सारा रोगी और जग सारा रोगी और जिन सतगुरु वेद न जाना जग सारा रोगी और सारे शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे सारे शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगी अरे जिन जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वेद न जाना जग सत साही। अब क्या बताया परमेश्वर ने कहा कि ये कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। मैंने इनसे प्रश्न किया कि गीता जी किसने बोला कि श्री कृष्ण जी ने, इन्होंने उत्तर दिया। और ये कहते हैं विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी ये जन्म ये इनके कोई माता पिता नहीं, विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं। मैंने कहा गीता जी बोलने वाला प्रभु चौथे अध्याय के पांचवें श्लोक में कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में लिखा है गीता जी में कि अर्जुन ऐसा नहीं कि ये राजा लोग ये सैनिक पहले नहीं थे, तू और मैं पहले नहीं थे या आगे नहीं होंगे, हम केवल वर्तमान वर्तमान में नहीं है, आगे भी होंगे होते रहेंगे अपने जन्म और पहले भी रहे हम, तो क्यों चिंता करता इस मरने और जन्मने की। और वास्तव में दूसरे अध्याय के सत्रहवें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और जिस परमात्मा से सारी सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है, अब गीता बोलने वाला परमात्मा तो कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, ये कहते हैं वो अजरो अमर है, इतनी मार हमारा और इनका इतना वाद विवाद है और हम उस परमेश्वर के विषय में बताते हैं, उस पूर्ण परमात्मा के विषय में बताते हैं जो गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 62 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान यानी सतलोक को और परम शांति को प्राप्त होगा। और मैं वो तत्वदर्शी संत हूं जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के 34वां वर्णन है। अब क्योंकि उस समय अपने भगतन जो थे वो बिल्कुल अशिक्षित थे और वो चतुर लोग जो गुरु लोग थे वो थोड़ी सी संस्कार जाना करते थे, उन्होंने ऊपर नहीं आने दिया, कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परमात्मा कहते हैं कोई है रे हमरे देश का जो ध्यान धरे सुन शेष का, कोई है रे हमरे देश का जो ध्यान धरे सुन शेष का, कोई है रे हमारे वहां सतलोक का जानने वाला, यहाँ पर कोई नहीं। क्या बताते हैं तन मन मंजन करे पाख, तन मन मंजन कर पाख सुन सुन साई सतगुर साख, सूरत कमल पर धर ध्यान धर मिनी खोज जैसे सिंध फार, दिव दृष्टि देवा दयाल सोहम बानी अति रिसाल, अनरागी अनहद बसंत तत्व तत्व दर्शी कोई संत लख है संते। कितनी प्यारी बात कही है के दिव दृष्टि देवा दयाल सोहम बानी अति रिसाल, अनरागी अनहद बसंत तत्व दर्शी कोई लख है संत, पद पर सी परवरदिगार गगन मंडल में निराधार स्वर्ग स्वर्ग रिसातल है अखंड। चढ़ देखो हंसा पवन दंड शंख बुझा मौले मुकंद, चल देखो संतोष बुध संत। तुम चार भगवान बता, चार हाथों के भगवान बताते हो और काल कहता है कि मैं हजार भुजाओं वाला हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 46 में अर्जुन कहता है, हे सहस्रा बाहु, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए, मेरा तो कलजा पाट गया, मैं मेरे से आपका ये भयंकर रूप नहीं देखा जाता। हे एक हजार भुजा वाले भगवान, आप उसी अपने चतुर्भुज रूप में आइए, क्योंकि श्री कृष्ण जी अर्जुन श्री कृष्ण जी मान रहे थे, श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान के अवतार मानते थे। अर्जुन ने सोचा था ये विष्णु है और अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन वो विष्णु नहीं था, विष्णु के पिताजी थे। से 1000 भुजा का भगवान था कि हे सहस्रा बाहु, 1000 भुजा वाले भगवान, अपने उस 4 भुजा वाले रूप में आ जाओ, मेरा तो दिल पाटन न हो रहा है, मेरा तो हार्ट अटैक होने वाला है, मैं डर बहुत गया आपके इस भयंकर रूप न देख। तो वो 1000 भुजा का है और हमारा परमात्मा शंख भुजा असंख, शंख बुजा मौले मुकंद, चल देखो संतोष बदसंद, जांबर से नूर अखंड धार, लख मौले मुर्शद का दीदार, सबद सिंद में सबद गाज, अनहद बाजे अति आवाज, सत पुरुष देवा से शरीर, जहां दास गरीब खेवट कबीर। कोई है रे हमारे गांव का, हमारे गांव का, कितनी सिंपल लैंग्वेज में सतलोक की महिमा गा रहे हैं परमात्मा। कोई है रे हमारे गांव का, पद चिन्ह रमता राम का। कोई है रे हमारे गांव का, पद चिन्ह रमता राम का, जहाँ अक्षय वृक्ष, जहाँ अक्षर अक्षय वृक्ष, आनंद रूप सूरत नवरत सोम स्वरूप, गगन मंडल देव दीवान आम, चल देखो संतो अगम धाम, अगम धाम सतलोक, तरवर शाखा गैबर गंध, जहाँ झलके सूरत कोटिक चंद, करोड़ चंद और चंद्रमा सूर्य जैसी वहां रोशनी उस परम पिता के दरबार में हो रही है, उनके रोम कूप की भी इतनी शोभा है। समाधान संगीत सोए, जहाँ बिन सतगुरु नहीं मिलना होवे, वहाँ सतगुरु बिना नहीं जा सकते, सतगुरु माने सच्चे गुरु, पूर्ण संत के बिना उस परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सेज सुरंगी सबज भात, जहाँ बिन ऋतु बरसे सदा समात, दामनी दीर्घ अजब ख्याल, जहाँ छह ऋतु बरस, जहाँ छह ऋतु बरसत है दयाल, बिना सीप मोती मुरार, बिन चश्मे देखो निहार, जहाँ मान सरोवर मुक्ति धाम, भुजा दंड पौनी वरियाम, जहाँ करीला अलग अलग अंग, जहाँ अनहद बानी अति उपंग, छतर सिंहासन श्वेत जान, जहाँ पीतांबर चिक रेतान, पल 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 डो मोती जुहार, चल अगमी ऐनक देख दीदार, चिक अंदर मुंदर मुकाम, दास गरीब बसे सुन गाम। अब यहां उस परमात्मा की और सतलोक के विषय में परमात्मा बता रहे हैं, तो उसका फिर और अच्छा विवरण देते हैं, तरतीवाइज सुनाते हैं, क्योंकि हमने अपने ज्ञान को ग्रहण करना है उन महापुरुषों की। महिमा से हमने परिचित होना है, क्या बताते हैं वहां जाने के लिए, क्या तरीका बताया है। ररंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फुन लार, समझ मन बोरा रे, ररंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फोन लारे समझ मन बोरा रे। रंकार, अब जैसे आपने देखा होगा राधा स्वामी पंथ वाले पांच नाम देते हैं, एक ये अरंकार ज्योत निरंजन, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। रंकार क्या नाम होता है, रंकार की क्या विधि सतिथि होती है कि जैसे मरता हुआ व्यक्ति अपनी जान की भीख मांगता है और फिर उस मालिक को याद करता है। जैसे एक समय हा हा हू हू नाम के दो देवता थे, उनमें अपने तप का अभिमान हो गया। हा हा कहता है कि मेरा तप जाता है, हू हू कहता मेरा ज्यादा है। अपने तप का, अपने अपने समर्थता का प्रमाण लेने के लिए कि किसका तप ज्यादा है, इस उद्देश्य से भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारा फैसला कीजिए, मेरा तप ज्यादा है या इसका ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक को तो कहना ही पड़ेगा, इसका ठीक कोनी। अर्जुन से कन्हु कह दिया कि भाई इसका तप ठीक पूरा, इसका कम है इसका ज्यादा है, तो ये तो सर्प जैसे होते हैं सिद्ध पुरुष, ये तपस्वी, इनमें तपस्या से सिद्धियां आ जाती हैं। एक तो नाराज होएगा और नाराज होते मुझे श्राप देगा, मुझे और मारेंगे गिले। तो कहने लगे देखो महात्मा जी, ना तो मैंने कभी तप किया और ना तप के विषय मुझे ज्ञान है, आप किसी और से फैसला करवा लो, अब विष्णु जी के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी ने अपना पीछा छुटाया, अब विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु हमारा कौन से का तप ज्यादा है। अब विष्णु जी के मन में यही आई कि ये दोनों के दोनों तपस्वी आदमी हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और मैं कहूंगा कि इसका ज्यादा है इसका कम है तो एक नाराज होएगा और ये मुझे श्राप देंगे। कहने लगे देखो महात्मा जी, मुझे इतना समय नहीं और ना ये तप हमने कभी इतना किया जितना आपने किया है, ये तो वही बता सके जिसका जो इसका जानकार हो, आप शिव जी से बात कर लो। अब शिव जी के पास आए, काफी देर में शिव जी की समाधि खुली। फिर शिव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान हमें बताओ हमारे कौन से का तप ज्यादा है। शिव जी ने सोचा भाई ये एक को तो कहना ही पड़ेगा तो दूसरा नाराज होएगा। भगवान शिव ने भी तरीका यही सोचा कि इस बला ने टाल दूं। भगवान शिव जी ने कहा कि आप मतंग ऋषि के पास जाओ, वो बड़े तपस्वी हैं और तप के विषय में वही जानते हैं ज्यादा। वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि बड़ा डिढ़ डोल था, तगड़ा पूरा, बहुत मजबूत मोटे, बहुत तगड़ी सेहत थी। और दोनों आ रहे थे, उन्होंने देखा कि वो साथ साथ सामने मतंग ऋषि की कुटिया है। मतंग ऋषि बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, पूरी पाल की पाल, लंबे चौड़े तगड़े। तो कहने लगे वो, पूछा भी कौन से मतंग ऋषि। किसी संत ऋषि ने बताया कि वो बैठे सामने वृक्ष के नीचे। तो उन दोनों ने मन मन में क्या कर लिया, एक ने सोचा काछा हाथी सा पड़ा है वायु, तो दूसरा ने सोचा तो मगरमच्छ जैसा हवाई को सूता, मन मन में सोचा अपने में। और मतंग ऋषि के अंदर काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी कि इन्होंने ऐसे सोचा है। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है जो मन में के सोच रखे वो बता देती है। अब मतंग ऋषि की बात सिद्धि ऑन होगी, उसने दोनों के मन की बात समझ ली। उन्होंने आकर पूछा कि ऋषि जी हमारे में कौन से की सिद्धि ज्यादा, कौन से की तप ज्यादा है, हमारा फैसला कीजिए। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला आप ही करो। क्या कह रहे थे तुम कि मुझे देखकर तू कह रहा था ये हाथी सा पड़ा है, तू कह रहा था मगरमच्छ पड़ा है, जाओ एक मगरमच्छ बनो एक बनो हाथी, अपना फैसला आप करो। तो दोनों वहां मर गए, शरीर छूट गया वो पांच तत्व वाला। फिर वो एक हाथी का जन्म हो गया, एक का मगरमच्छ। जब वो तगड़े जवान हुए तो हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, खेचम खेचा पूरी क्लाचे, तगड़े तगड़े हो रहे थे, बड़े मोटे मोटे। तो बहुत रिहर्सल होती रही, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया और हाथी जब मरते जब बिल्कुल सूंड थोड़ा सा शेष रह गया पानी घुसनते इतना दरिया में गहरा ले गया मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा ईब मर गया, पहले तो अपने हांगे की बड़की चला रहे थे अपनी शक्ति से अपना फैसला कर रहे थे, फिर हाथी ने याद किया राम हे राम आधा मतलब आधा अक्षर ही बोला था, मरते हुए ने याद किया राम, इसको ररंकार धुन कहते हैं। कहते तभी परमात्मा ने आके उनका छुटकारा करा दिया और दोनों को जो है वहां से उसको हाथी मगरमच्छ के माथे में वो मारा सुदर्शन चक्र, मगरमच्छ ने वो पैर छोड़ दिया हाथी का, हाथी बाहर निकला। तो भगवान ने कहा कि चल भाई हाथी यानी हाथी वाली आत्मा जो हा हा हु हु वाले थे, हा हा हाथी बना था हु मगरमच्छ के, चल भी हा हा तू स्वर्ग में। मगरमच्छ कहने गए भगवान हु हु वाली आत्मा के मालिक ये तो हमारी दोनों की बराबरी की लड़ाई थी, ये तो साथ क्या उनका मुकदमा था, ये किस लिए स्वर्ग जा रहा है और मुझे क्यों नहीं ले जाया जा रहा। विष्णु जी ने कहा कि भाई इसने मुझे याद किया है, कति हृदयत है, कति रोते हुए याद किया मेरे को, इसलिए मैं इसको लेने आया हूं। तो मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान जैसे ये आपको याद कर रहा था ना मरता हुआ, तो मुझे मैं भी ऐसी करुणा से आपको याद कर रहा था, बेशक मैं मानवस नहीं छोड़ रहा था इसे, पर आपकी याद मुझे भी ऐसे आ रही थी, जब यो आपको याद कर रहा था दया मेरे में आ रही थी, पर मैं अपने स्वभाव वश इसको छोड़ नहीं रहा था, आप तो अंतर्यामी है। तो दोनों का ही वो छुटवा कर शरीर और विमान में बैठा कर और फिर वहां स्वर्ग तक ले गए। इनका तो बस स्वर्ग में जाना और आना यह बड़ी बात मान रखी ना, इति से मैं गज और गरा की मुक्ति मान रखी है, ये कोई मुक्ता मक्ता नहीं। बाकी उदाहरणार्थ समझाया जाता है तो क्या कहा कि इसको ररंकार धुन कहते हैं, ऐसे याद कर मेरे को परमात्मा, जैसे किसी भी इष्ट की साधना करनी है तो ऐसे कीजिए तब मदद करूंगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, ररंकार रसता रहे मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे। जैसे माँ के गर्भ में आप करा करता ना हे मालिक, बोलते निकले कोई ना, तू ही है तेरे बिना कोई दूसरा मेरा साथी नहीं है, कहते वही सती ची तू ईब बना ले, अब भूल जाए इस नकली नाते और रिश्तों को, केवल मुझे याद कर, बाकी अपना जो मैंने तेरी ड्यूटी लगाई है वो भी करता रहे, माँ की ड्यूटी लगाई है तो माँ का पूरा रोल कर, नहीं तो वह पिक्चर फेल हो जाती है, जो रोल ठीक ना करे तो उस भूमिका ठीक नहीं की। तो ये जो आपको भूमिका यहाँ दी है प्रभु ने, बेटे की बेटी की पति की पत्नी की माता की या पिता की जो भी दी है उसको ठीक निभा, उसमें भी कोई डंडी मत मारिए और फिर अपनी भक्ति में नागा मत करना, फिर मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या बताते हैं, ररंकार रसता रहे मन बोरा रे, रस्ता माने जैसे संचार रहे उसका मालिक का हृदय में, जैसे टपके जाट मतलब एक तो टपकना उसे एक रसना बिल्कुल निर्बाध चलता रहे, यानी उसमें वह एक रस भावना प्रभु में विनम्रता और वो कशक मालिक वाली बनी रहे, कि जय इब कर रह गया है भगवान, ना जाने कितना पहाड़ टूट जाएगा, ना जाने कहाँ जन्म होगा, कैसा कोई परिवार मिलेगा, ना पता कहाँ कौन सी समाज में उत्पन्न हो जावा, फिर भगवान का जिक्र भी ना पावे, या कोई पशु बन जावा पक्षी बन जावा, इन तरह की इन बातों को याद करके, और तू ही तेरे बिना मेरा कोई नहीं, इस भावना से उस मालिक को याद करो। फिर क्या बताते हैं, ररंकार रसता रहे मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे, सोहम शब्द सही मिल मन बोरा रे, अग भेद अपार समझ मन बोरा रे, अब जैसे कई संत जन सोहम नाम देते हैं, कहते वो भी ऐसे नहीं, उसका भी विधिवत तरीका है और अधिकारी बिना वो कोई लाभ नहीं देगा। पर आज आपने दिन के सत्संग में सुना था, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, नम्मा छिपा ओम तारी ही, पीछे सोहम वेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर न होई। रामानंद ओम की आशा, ताते खंडित सोहम स्वासा, संख अंग धरवाई देही, चिन्या नहीं शब्द निर्मोही। के न जाने कितने सपुत संख बार रामानंद जी ने जन्म हुए और वो केवल ओम नाम जाप करते थे, इसलिए उसका दूसरा मंत्र वाला जो श्वास खंडित था, जब वास्तव मंत्र मिला तो फिर कहते हैं उसका बेड़ा पार हुआ। तो परमात्मा कहते हैं ये सोहम शब्द हम लाए थे और ये चोर हैं जो नाम इसको देते हैं, ये नाम देने के अधिकारी भी नहीं इस मंत्र का, इनको कोई अधिकार नहीं है। एक तहसीलदार और प्रधानमंत्री की मोर लावे, काय की समझदारी उनकी। तो ये कोई भी संत इन मंत्रों के देने के अधिकारी नहीं है। क्या बताते हैं, सोहम शब्द सही मिल मन बोरारे, इसके बाद अग भेद अपार समझ मन बोरारे। उस मंत्रों का ओम और तत् ये दोनों मंत्र जाप हो, फिर उसके सिमरण की विधि का तरीका ठीक हो, उसके बाद कहते हैं बहुत बड़ा भेद एक सार नाम का और है। जहां ज्ञान ध्यान की गम नहीं मन बोरारे, सुरत नरत नहीं जावे समझ मन बोरारे, कोट प्राणी दान धरे मन बोरारे, उलट पड़े भौ आय समझ मन बोरारे। करोड़ों ध्यान धरते हैं ये नकली साधना करने वाले, पूर्ण संत के तत्व भेद बिना ये साधना जो करते हैं इन मंत्रों की, कहते हैं उल्टे फिर आकर गिरते हैं 84 लाख योनियों में समझ मन बोरारे। सिरसाटे का खेल है मन बोरारे, वो सूढ़ी ऊपर से जो समझ मन बोरारे, जहाँ शंख कोट रवि जल मल मन बोरारे, नूर जहूरम तेज समझ मन बोरारे। जहाँ पर शंख करोड़ों शंख कोट यानी शंख करोड़ वहां पर सूर्य का प्रकाश है, निकट पहुंचती है तो वहां ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसी जोर की ऐसी आवाज है जैसे बिजली चक्कड़ क्या करे, जैसे बादल गरजता है ना, बिजली गिरने की आपस में घर्षण जब होती है उनकी बादल की, जैसे कह रहे ना बिजली चमकी फिर उसके बाद गड़गड़ की, बहुत भयंकर आवाज आती है। यहाँ जो हम सुनते से 1000 गुनी तेज आवाज वहां पर बादल की गर्ज सुनती है, और उसने सुनते वो समाधिस्थ जो जाता है ना मनमुखी, उसका इतना भयंकर डर होता है कि वो इतना डर जाता है एकदम, उसकी समाधि टूट जाती है, पागल हो जाता है, आंखें फट जाती है, वो बिल्कुल घर का रहता नागाट का। तो क्या कहते हैं, कायर भागे देखते मन बोरारे, सुन अनहद घन गोरे समझ मन बोरारे, गावन ही मगावल मन बोरारे, कोई सूरा रे सी ठोड़े समझ मन बोरारे, लोजा पीठ न फेर ही मन बोरारे, सन्मुख अर्प शीस समझ मन बोरारे, तन मन मर्तग हो रह मन बोरारे, तिस बैठे जगदीश समझ मन बोरारे। के वहां तो कोई सूरमा ही ठीक ठिकाना डटेगा इस सत भक्ति के ऊपर, नहीं तो सारे के बस की बात नहीं है सत भक्ति पर, यानी पूर्ण रूप से खरा उतर गया। और जब तक खरे नहीं उतरेंगे तब तक परमात्मा हमारे निकट नहीं आओगा। कहते तन मन मर्तक हो रहे मन बोरारे, और उसे भेंटे जगदीश समझ मन बोरारे। मर्त्य कैसे होना है कि यहाँ संसार की इस 21 ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु की चाह प्राणी को नहीं रहे। ठीक है, जब तक हम यहाँ हैं, इस होटल में रह रहे हैं, तो ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं ये प्रभु आपको प्रदान कृत करता ही रहेगा। आप इसके चरणों में विधिवत लगे रहिए और फिर आखिर में जो मालिक दे दे उसी में सबर कर दे, घनी चाह नहीं करे। कहते ऐसा जो हो जाएगा और यहाँ से बिल्कुल आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार ठीक नहीं है, फिर आपकी अपने आप यहाँ से इच्छा हट जाएंगी, उसमें इतनी लो लग जाएगी परमात्मा के सच्चे लोक में, आपने यहाँ कोई चीज नहीं खींच सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। तब कहते हैं उसको परमात्मा प्राप्ति होगी, ये हो जाएगी कुछ दिनों के बाद हो जाएगी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन जिस व्यक्ति को मैं जो ज्ञान बता रहा हूं कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी कृपा से जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए होते ही रहेंगे, और वो परमात्मा कोई और है, उसका कोई संत तुझे मिल जाए, वो विधिवत साधना बताए, फिर ये तत्व ज्ञान से परिचित करा देगा, उसके बाद सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के बाद और जो सारे परिचित हो जाएगा सारे कर्म से, तो वो व्यक्ति फिर जन्म मृत्यु से ही छूटने की प्रयत्न करता है, वो कुछ नहीं मांगता, वो बिल्कुल उस परमात्मा को ही चाहता है, उस भगवान को समझ जाता है, सारे आध्यात्मिक कर्म को समझ जाता है कि कौन भगवान कितनी स्थिति का है, उनकी क्या स्थिति है, वो नाशवान है, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, पशु 84 लाख योनियों में भी जाते हैं, इस सब कर्मों से परिचित हो जाता है, उस परमात्मा से जो परिचित हो जाता है, उसके बाद फिर वो केवल इस जरा मरण से छूटने का ही वो साधक प्रयत्न करता है, यहाँ की कोई चीज की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा परमात्मा फिर कौन है वो तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया प्रभु ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में यहाँ आदरणीय गरीबदास साहेब बता रहे हैं, क्या कहते हैं, सतलोक को चालिए मन बोरा रे, संत समागम हेत समझ मन बोरा रे। अब सतलोक को चलना छोड़ इस झंझट ने, और कैसे जाया जाएगा के संत समागम हेत समझ मन बोरा रे, के इस सत्संग में तू एक प्यार बढ़ा, इसकी चाह बढ़ा, रह रह कर सत्संग सुन, कुछ दिनों के बाद अपने आप आत्मा परमात्मा को चाहने लग जाएगी, ये संसार असार नजर आएगा आपको। क्या बताते हैं, सतलोक को चालिए मन बोरा रे, संत समागम हेत समझ मन बोरा रे, ता एक गुमट अनूप है मन बोरा रे, जा छतर सिंहासन सवेत समझ मन बोरा रे। कहते वहां सतलोक में एक बहुत सुंदर गुमट बना है, बहुत बड़ा सुंदर, जैसे मंदिर टाइप होता है, बहुत बड़ा, कहते गुमज बना है, सफेद गुमज बना है, और वहां पर सवेत सिंहासन और सवेत ही मुकुट है उस परमेश्वर का। ता एक गुमट अनूप है मन बोरा रे, जा छतर सिंहासन सवेत समझ मन बोरा रे, शब्द महल गुंजार है मन बोरा रे, जा डोरे सोहंगम चोर समझ मन बोरा रे, गरीब दास जहां रते मन बोरा रे, जा गुंजे उज्जवल भंवर समझ मन बोरा रे। अब अगले शब्द में बहुत निर्णय देते हैं परमात्मा, ये काया छन भंग है मन बोरा रे, वो सुमरो सर्जन हार समझ मन बोरा रे। ये शरीर तो अक्षण भंगुर है, इसलिए उस परमेश्वर की भक्ति कीजिए। रोम रोम धुन ध्यान धर मन बोरा रे, आठों कमल उचार समझ मन बोरा रे। क्या बताते हैं कि इन आप हमने 7 कमल सुने हैं, ये कहते हैं परमात्मा के 8 कमल, 8 कमल, एक मूल कमल, एक स्वाद कमल चक्र, फिर नाभि कमल, फिर हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और ये सेंसरार कमल, और इसके बाद अष्ट कमल, आठवां कमल। वो आठवां कमल कहाँ है वो भेद जब आपको पता लग जाएगा फिर यहां से चलने की पूर्ण तैयारी हो जाएगी। यो लाहा मन ली जिये मन बोरा रे, सुरत नरत कर ली न समझ मन बोरा रे, पंछी खोज ना पावे ही मन बोरा रे, जो दरिया मदमी न समझ मन बोरा रे, पास तत्व के मध्य है मन बोरा रे, एक नौ तत्व लिंग शरीर समझ मन बोरा रे, नौ तत्व के से भी आगे ही मन बोरा रे, अजर अमर गुरु पीर समझ मन बोरा रे। अब जैसे ये शरीर आपका ऊपर का जो शरीर है ये तो ऐसा है जैसे अंडे का कवर होता है, अंडा आपने देखा होगा, अंडे में तो जब बच्चा बन जाता है तो वो कवर पड़ा रह जाता है, उस कवर ने, अंडे के जो कवर ने केवल इतना काम कर दिया कि वो बच्चा बन गया और बच्चा उसमें से निकल के और उड़न लग गया। वो उस बच्चा तैयार करना था उस अंडे के, उस कवर ने वो कर दिया। तो ये जो कवर है इसके अंदर हमारे एक लिंग शरीर है और उसमें जीव है, उससे सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर भक्ति से फिर वो इतना उसमें शक्ति आ जाती है, सिद्धि आती है। तो उस जैसी साधना जो करता उसकी उतनी ही शक्ति उसमें आ जाती है। ये ऊपर का अंडे वाला कवर यहाँ रह जाता है, इसको रहने दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे जब तमने या काम पूरा नहीं किया और ये वैसे खराब हो गया, वस्तु ठीक बनी नहीं, तो वो व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं, देह पड़ी तो क्या भया, झूठी सब है पटी ही टे, जैसे पक्षी उड़ा आकाश को भाई, चलते कर गया बीट। इस पांच तत्व के शरीर को तो ईसा जानो जैसे पक्षी बीट कर जा करे, कहां तो पक्षी और कहां उसकी बीट, अर्थात उस वास्तविक जो इसके अंदर जीव है और जिसको हमने शक्ति चार्ज कर रहे हैं भक्ति सेवा दान सिमरण करके, उससे जो चीज बन जाएगी फिर यो शरीर तो एक बीट की तरह, जैसे सर्प कांचली छोड़ जाया करे। अब सर्प ओरिजिनल चीज है और कांचली उसके ऊपर एक कवर था, तो वो सांप न्यारा है, वो सांप तो एक अभी भी जोंका त्यू है, यानी वो अलग चीज है, वो शरीर सही है उसका और उसको ऊपर कवर छोड़ दिया। ऐसा ही ये शरीर हमारी एक कांच भी समझो, और ये एक अंडा एक कवर छोड़ जाएंगे जैसे पक्षी की बीट की तुलना में। इब हम इस शरीर को चुरोते हैं ये छूट जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, कब तक होता, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता। और ये पता है कि ये तो ऊपर का कवर था, ये तो छोड़ गया छूट गया, इसमें जो सिद्धि साधना भक्ति भक्ति जो कर गया, जो कमाई कर गया, उसे वो चार्ज कर लेगा तो बढ़िया हो गया, वो तो इससे अलग चीज है वो चीज। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो साधना तुम लोग करते हो उससे एक लिंग शरीर बन जाता है। जैसे सुखदेव ऋषि ने गंदे अंडे के अंदर उसकी आत्मा पड़ी थी, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई प्रभु की, उससे वो अंडा भी, अंडे में बच्चा भी बन गया, अंडा स्वस्थ भी हो गया और उसमें वो बैटरी चार्ज भी होगी उनकी कथा मंत्र सुनते, उसके अंदर वो लिंग शरीर बन गया और उसने पक्षी का शरीर भी छोड़ दिया और फिर भी उस अंदर का शरीर सूक्ष्म शरीर जो था वो चार्ज हो गया, और उस चार्ज होने से वो सुखदेव व्यास जी की ऋषि की पत्नी की गर्भ में चले गए, वहां से 12 वर्ष में मनुष्य शरीर धार करके वो बाहर आए, तो फिर भी वो बैटरी चार्ज थी, और यदि आगे उस मनुष्य शरीर पा करके फिर से उसको चार्ज नहीं करता तो 84 लाख योनियों में तुरंत सुखदेव चले जाते। उसके लिए राजा जनक फिर गुरु बनाने पड़े। राजा जनक जी कहां तक पहुंचाए, उनको स्वर्ग तक पहुंचा दिया। राजा जनक स्वयं फिर 84 लाख योनियों में श्री नानक जी बनकर आ गए। श्री नानक जी को फिर दोबारा परमात्मा मिले अपनी प्यारी आत्मा को, फिर उनको पार करके सही नाम दे के वास्तविक साधना करा के सार नाम दे के उनको पार कर गए। तो यहाँ क्या बताते हैं, पांच तत्व के मध्य है मन बोरा रे, एक नौ तत्व लिंग शरीर समझ मन बोरा रे, नौ तत्व के से भी आगे है मन बोरा रे, अजर अमर गुरु पीर समझ मन भोरा रे, सूक्ष्म रूप है तास का मन भोरा रे, ये चतुर्भुजी चतुरंग समझ मन भोरा रे। अब ये चतुर्भुजी भगवान, ये तो चतुरंग है, ये तो बनावटी अस्थाई काम है चतुर्भुज भगवानों तक भी। अष्टभुजा है तास मद मन भोरा रे, सुरत अचल विहंग समझ मन बोरा रे, सहस भुजा संगीत है मन बोरा रे, शिखर स्वरूप बैराट समझ मन बोरा रे, विश्व रूप है तास मद मन बोरा रे, गुरु लखाई बाट समझ मन बोरा रे, धनुष बाण मूसल धजा मन बोरा रे, अजब नवेला कंत समझ मन बोरा रे, शंख चक्र गदा पदम है मन बोरा रे, कौष्टक मणि झलकंत समझ मन बोरा रे, धनुष बाण मूसल धजा मन बोरा रे, अजब नवेला कंत समझ मन बोरा रे, खड़ग धार भुज दंड है मन बोरा रे, वाफर क ध्वजा निशान समझ मन बोरा रे, निरख परख के देख ले मन बोरा रे, सच्चे सतगुर के परवान समझ मन बोरा रे। अब क्या बताते हैं कि ये जो तुम्हारा भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी चार भुजाएं हैं, और इन तुम्हारी ये माता है अष्टंगी, इसकी 8 भुजाएं हैं, और ये जो काल भगवान ब्रह्म है इसकी 1000 भुजाएं हैं, और यही ये अन्य रूप भी धारण करता है। जैसे एक हाथ में मूसल ले लिया, एक में तलवार ले ली, इस तरह कहते हैं ये भी काल के ही रूप हैं, यानी ये पावर भी पूर्ण परमात्मा के अंदर है। तो क्या बताते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कह सकता है कि मुख्यमंत्री वाली पावर भी मेरे अंदर है, डीसी की पावर भी, कमिश्नर की पावर भी, मंत्री की पावर भी, मेरे अंदर सारी पावर्स का समावेश है, ऐसे यहाँ स्थिति बता रहे हैं उस पूर्ण परमात्मा की। अब आगे क्या बताते हैं, ता आगे सतपुरुष है मन बोरा रे, जिसके बुझा असंख समझ मन बोरा रे, वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी असंख बुझा है, उसकी कोई गिनती नहीं। श्वेत छतर चौरा ढुरे मन बोरा रे, अंत कोट रवि जल मन मन बोरा रे, हंस उड़ गन पंख समझ मन बोरा रे, श्वेत छतर चौरा ढुरे मन बोरा रे, दामनी दमक दयाल समझ मन बोरा रे, अमर कच्छ अनहद पुरी मन बोरा रे, सतगुरु नजर निहाल समझ मन बोरा रे, अंत युगन की बाट थी मन बोरा रे, पलमाही परवान समझ मन बोरा रे, मेहर दया से पाई ये मन बोरा रे, वो दर्घ दीवान समझ मन बोरा रे, संख योजन पर लाल है मन बोरा रे, वो दम क्या चश्मे तीर समझ मन बोरा रे, दास गरीब लखाई या मन बोरा रे, सतगुरु मिले कबीर समझ मन बोरा रे। अब इस तरह की महिमा उस परम पिता की बताई, किसको, वीर सिंह जी को परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने। वीर सिंह चरणों में गिर गए, अच्छे भाग थे, कोई पुनकर्मी प्राणी थे, जिनको परमात्मा ने ये लीला करके अपने चरणों में ले लिया। अब वीरदेव से बघेल को प्रथम अंतर परमात्मा ने दान कर दिया। उसकी पूरी श्रद्धा देखकर ये सात मंत्र का नाम जाप दे दिया। कुछ दिनों के बाद परमात्मा आए। वीरदेव सिंह ने कहा कि प्रभु मुझे सतनाम दे दो। परमात्मा बोले भाई सतनाम देंगे तेरे तय। और कहने लगे चलो महाराज जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, हमारी तैयारी हो रही है, आप भी हमारे संग चलो। परमात्मा ने कहा भाई संत और शिकार नहीं खेला करते। वीरदेव सिंह आपने उपदेश ले रखा है और शिकार आप शिकार खेलने जा रहे हो। कहने लगे जी ईबीब का खेल आऊं फिर कोई ना जाऊं, ईबीब का शिकार खेलने जा, तो तैयारी होगी पूरी, आप भी चलो महाराज जी आप भी चलो। परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार करने थे। एक तो नादान ये भक्ति करेगा नहीं जब तक इसको अब मेरे पर विश्वास नहीं होगा कि मैं संत नहीं भगवान हूं, इसको थोड़ा सा झटका दूं, पुण्य आत्मा है, इस राज काज और ऐसे मंद विचार के लोगों में रहने से ये नादान आत्मा अपने आप को भूल गया। परमात्मा ने कहा भी मैं चल तो पड़ूंगा पर तुम्हें कोई शिकार नहीं मिलेगा, मैं साथ चलूंगा तय। वीरदेव सिंह ने कहा कि नहीं प्रभु वहां तो बहुत ज्यादा जंगली जानवर हैं, जहां हम जाएंगे ना वहां बहुत मिल जाते हैं। अब कौन समझावे संतों के संकेत होते हैं, कहते हैं सतगुरु की सैन समझनी चाहिए, संत क्या बोलते हैं क्या कहना चाहते हैं, और खुल्लम खुल्ला कहे तो भी ना मानते, संकेत समझना चाहिए सतगुरु क्या बताना चाहते, पर नहीं माना। परमात्मा चले गए उनके साथ में, सैनिक भी गणे, चलते चलते सारे घूमते रहे, धक्के खाते रहे, जंगल में पहुंच के कोई शिकार ना पाया। आखिर में प्यास भूख तो तंग हो गए, पानी की तो मिला कोई ना, जो साथ ले गए थे वो पानी पी लिया, खाली बर्तन हो गए, जान निकलने को होगी, भूख अलग से सता रही है, पानी बिना रोटी बना नहीं और प्यास प्यास बहुत लगी हुई थी। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि भी सैनिक को तलाश करो, कहीं आसपास जल तलाश करो, तलाश कहीं घोड़े दौड़ा दिए 10-10 किलोमीटर तक, 20-20 किलोमीटर तक कहीं पानी ना मिला। परमात्मा ने देखी उनकी हालत, जब करी याद है भगवान मर गया अस्त है, तो परमेश्वर ने कहा कि देखो ये ऊपर है ना, बहुत ऊंचा स्थान था, पहाड़ सा नजर आवा था कि वहां देख लो कहीं पानी मिल जावत है। अब वीर सिंह जी कहते हैं, वो सैनिक कहते हैं महाराज जी इतने यहाँ सारा देखा है, समतल में तो पानी है नहीं, इतने पहाड़ पर पानी कैसे हो सकता है, भगवान मुश्किल है। एक वृद्ध समझदार सा सैनिक था, मंत्री था, उसने कहा भाई सतगुरु जो संकेत करते हैं ना देख लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। दो दिन ऊपर चढ़ कर घूम घाम कर देखा तो इतना सुंदर बाग बगीचा, फलों से लद पद, बड़े अच्छे फल लगे हुए, मीठे मीठे अंगूर सेब संतरे केले, और एक सुंदर बहुत सुंदर सरोवर पानी का भरा हुआ है। उन सैनिकों ने कहा आ जाओ पानी मिल गया पानी मिल गया। अब सब लापड़दा चल पड़ा, घूम घाम का वहां पहुंचे, देखा तरह तरह की, इतना सुंदर बगीचा, इतना सुंदर पानी सरोवर भरा हुआ, पहले पानी पिया फिर फल खाए, आनंद मनाए, कुछ फल तोड़ लिए डाल लिए, पानी मटकिया में भर लिया और चलने प्रस्थान कर दिया। चलने लगे तो काफी दूर जब जा लिए तो वीर सिंह जी ने कहा भर भगवान घोड़े पर बैठे और सतगुरु को भी बैठा रखा घोड़े पर, कहा कि हे भगवान देख लीला, हे गुरुजी देखो लीला मालिक की, भगवान की, कितना सुंदर बाग देख, कितने ऊपर बना दिया और कैसा पानी भर रखा, ओ हो नो। पीछे मुड़कर देखा वीर सिंह जी ने, ना वहां जल था और ना वो बगीचा था, सूखे डड़े पड़े, वही रोक दिए सारे सैनिक, रुको भाई क्या हो गया, वो कहाँ गया बगीचा, कहाँ गया वो जल। परमात्मा बोले जहां से आया था बेटा वही गया, ये यहाँ का नहीं था, ऐसा पानी पिया तुमने कभी जीवन में, ओ हो ये भगवान क्या खाया ऐसे फल तूने कभी, राजा है तो आप तो, ये ऐसे स्वादिष्ट फल कभी खाए थे भगवान स्वप्न में भी नहीं, इतना मीठा पानी इतने मीठे फल हमने जिंदगी में नहीं खाए थे भगवान, ये कहाँ कहाँ गया वो। परमात्मा ने कहा सतलोक से आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए, और सतलोक में गए ये सारा सामान बेटा, यहाँ का नहीं था ये। अरे तेरे की इसको स्वप्न माने या को जंतर मंत्र माने, नहीं, क्योंकि पानी भरा मटकिया में और वो फल भरे नो के नो उनके घोड़े के ऊपर रख रखे बोरों में। अब किसे शिकार खेल रहा था वीर सिंह, तो कान तोड़कर कान पकड़कर भगवान, जिंदगी में कभी शिकार नहीं खेलूंगा भगवान, गलती होगी मेरे थे, वापस आ गए। एक हफ्ते के लिए गए थे, अगले दिन वापस सामने, अगले दिन वापस आ गए तो रानी ने पूछा क्या बात हुई। अब रानी नाम लेवानी थी, वीर सिंह की बात नहीं माननी थी कि आपने देवी देवता छोड़ते हो, आप श्राद्ध बिना निकालते हो, कैसे गुरु बना लिए। तब वीर सिंह ने कहा अपनी रानी से कि ये तो भगवान है, ये सारे पूछ लो, आज हमारी मृत्यु हो जानी थी, इतनी भयंकर प्यास लगी थी और इस परमेश्वर ने इतने बड़े पहाड़ पर ये भगवान ठाट कर दिए, ओए होए। और वो फल लेगी रानी ने भी खाई, वो अमृत आ रहा ऊपर तक प्रसाद रूप में, वो फल खाते रानी की बुद्धि भी ठीक होगी। जल पिया मालिक का अमृत पिया, दोनों ने उपदेश ले लिया। तब परमात्मा ने कहा नादान नाम ले रहा कर शिकार खेलता फिर, चे कहाँ का ज्ञान था। न बोले जी कति ज्ञान थी, नहीं था हमें आज तक ऐसा ज्ञान, ऐसा को मर्यादा बताने वाला संत प्रभु मिला नहीं था। ए मालिक अक्षमा कर दो अपने दास को, आगे जीवन में गलती नहीं करूंगा। तब वीर सिंह ने उपदेश दिया और फिर अपना आत्म कल्याण करवाया। बोलो सदगुरुदेव की जय। तो क्या बताते हैं कि जो साधना तुम करते वो ठीक नहीं थी। परमात्मा महिमा बताते हैं, अब दू हम तो परपटन के बासी। परपटन यानी उस परलोक, पटन माने स्थान, पर माने दूसरा, सतलोक के रहने वाले हैं। तीर्थ जान तीर्थ जाही न देवल पूजा ना वृंदावन काशी, ऐसा दर्पण मंज हमारे हम। अब दू हम तो पर पटन के बासी, तीर्थ जाना देवल पूजे, देवल माने मंदिर, ना हम मंदिर पूजते और ना वृंदावन काशी, ऐसा दर्पण मंज हमारे हम दर्पण के माही, एनक दरिया चश्मे जोए नूर निरंतर जाई, रहनी रहे सो रोगी होई करन, रहनी रहे सो रोगी कहिए करनी करे सो कामी, रहनी करनी से हम न्यारे ना सेवक ना स्वामी, इंद्री कस्ता सोए कसाई जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल विहंगम हमरा जीतो जम किंकर जोरा। कहते हैं हमारा जो मार्ग है ये कठिन नहीं है, इंद्री कस्ता सोए कसाई और जग में बह सो बोरा, यानी जैसे ये हठ योग करते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं, कहते तो मूर्खों का काम है, देही के साथ दुश्मनी लगाते हो। हाँ इंद्री कसे सो कसाई कहिए, यानी हट करके अपने इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं, उसके विषय में गीता जी में कहा कि वो मूर्ख लोग हट करके अपने इंद्रियों को रोक करके और मन से फिर भी उनका संचरण करते रहते हैं, वो मूर्ख लोग हैं, उनको कभी कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती, ना कोई लाभ हो सकता। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि हमने अपने ज्ञान विषय को आधार रखे, ये नहीं कि भी जैसे आपने शादी करवा ली, बाल बच्चे हैं, अपना परमात्मा ने जो हमें मर्यादा बताई है कि फिर अपने मन को कंट्रोल करके अपनी नेक नीति से रहिए। और दूसरा बात कहते हैं कि ठीक है जब आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि ये तो असंग जन्म हो गए हमने यही क्रियाएं करते को, और जब तक यहाँ से छुटकारा नहीं होगा तब तक बात बने को नहीं, जब हमारी आत्मा जाग जाएगी फिर हमने कोई किसी साधना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप मन हट जाएगा दुराचारों से, आपको स्वप्न में भी वो बात याद नहीं आएगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी इस जीव की। तो कहते हम ना तो इंद्री कसते, और मान ले शादी भी नहीं कराई, जैसे परमात्मा आए थे उन्होंने कोई शादी नहीं कराई थी कबीर परमात्मा, ये उदाहरण दिया था कि हम यहाँ की किसी इच्छा की, यहाँ की वस्तु की कति मन में इच्छा ही नहीं बनती, जैसे धर्मदास जी को जब यहाँ का ज्ञान हुआ था, सतलोक का पता लग गया था कि इस काल ने हमें धोखा दे रखा है और हम एक दूसरे के साथ ही बांध रखे पति और पत्नी बना गए, और फिर हमारा झाड़ा लेकर के अंत में कति खाली करके नरक में ठोक देता है। तो उस समय धर्मदास जी ने कहा था कि परमात्मा आपका दास कुछ नहीं मांगता, भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवन के देवा हो, मुझे तो भक्ति दान दे दो परमात्मा। और कहते हैं यहाँ की कोई भी इच्छा, सपने में भी इच्छा, कहते हैं धन परिवार संपत्ति और सुंदर नारी हो, सपने में भी इच्छा ना करूं गुरु अन तुम्हारी हो। तो ऐसे मन में नफरत बन जाएगी, जैसे कहते हैं जैसे किर का जहर का मन बोरा, जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कि तुम्हें जब जिसने शादी करवा ली वो तो अपने बाल बच्चों में मर्यादावत रहते हुए दुराचार नहीं करे, और फिर आन स्त्री को ऐसा समझे जैसे जहर का किरका होता है, जहर की जरा भी कण को कोई लगा नहीं गा जिसको पता लग गया कि वास्तव में ये जहर है, वो छुए तक का नहीं। तो इतना भय बन जाएगा, इतना सावधान हो जाएगी वो आत्मा, फिर उस पर असर नहीं होगा किसी दूसरे किसी प्रकार के विकार का। उसमें उसके अवगुणों का पहले ध्यान आ जाएगा कि ये किया ये ऐसा नुकसान होगा, इसकी ऐसी हानि होगी, अनजान व्यक्ति गलतियां करते फिर उसका कष्ट उठाते। तो यहां बताते हैं कि जैसे कर का जहर का, जहर का जरा से भी कोई तण भी नहीं छू सकता जिसको पता लग गया, नहीं दूर कर देगा एक तरफ पटक दे वही नहीं, इसका तो महापाप लगता है। तो ऐसा हमें पता लग जाए कि ये वास्तव में हानिकारक वस्तुएं हैं, जो क्रिया हम करते हैं कर्म, ये महापाप का कारण बन जाएगा। फिर कहते हैं उसके लिए कहा कि रैनी रह सो रोगी कहिए, करनी करे सो कामी, रैनी करनी से हम न्यारे ना सेवक ना स्वामी, इंद्री कस्ता सोए कसाई जग में बह सो बोरा, ऐसा खेल भी हंगम हमरा जीतो जम किंकर जोरा, ठाकुर तो हम ठोक जलाए हर की हाथ उठाई, राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में भाई। इस तरह भगवान की तो हमने दुकान खत्म कर दी, ये तत्व ज्ञान दे के इनकी तो हाथ उठा दी, और कहते हैं राम रहीम मजूरी करते, ये तुम्हारे राम तुम जिसको अल्लाह कहते हो यही ज्योत निरंजन, ये तो उस परमात्मा के दरबार में नौकर हैं। गरीब आदमी गरीब दास साहेब बता रहे कि कबीर परमात्मा की महिमा को, के काल डरे करतार से जय 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 जगदी से, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरग डारे सी से। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि ठाकुर तो हम ठोक जलाए हर की हाट उठाई, ये राम रहीम मजूरी करते उस दरगाह में भाई, शेष महेश गणेश्वर पूजे पत्थर पानी ध्यावे, रामचंद्र से रामचंद्र दशरथ के पूता से करता ठहरावे। संतों के बहकाई हुई घोड़ी आत्माएं शेष महेश ब्रह्मा विष्णु महेश और पत्थर पानी गंगा में नहाना जमुना में नहाना तीर्थ पर नहाने से, कहते हैं इन कोई इन्हीं की तरफ इनका आस्था बड़ी हुई है, और रामचंद्र दशरथ के पुत्र से करता ठहरा, इस रामचंद्र के राजा दशरथ के बेटे रामचंद्र जैसे नहीं भगवान बताओ इसको करता बनाए बैठे। कहते शेष महेश गणेश्वर पूजे पत्थर पानी धावे, रामचंद्र दशरथ के पुता से करता ठहरावे, एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, दसमा भी धूंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। एक भी भगवान ना नुके नो नो बना रखे ने, और दसमा भी भाएगा जैसे नी कलंक नाम से कलयुग के अंत में राजा राजा जो हरिश्चंद्र जी की आत्मा वो दसमा अवतार धारक होगी विष्णु जी के लोक थे, और वो इस विष्णु अवतार कहलाते, वो भी ऐसे ही अपना जैसे श्री राम श्री कृष्ण जी ने तो उनकी ड्यूटी लाई थी, कंस मार दिया, केसी मार दिया, चाणूर मार दिया, शिशुपाल मार दिया, इस तरह की करके अपनी क्रिया यो दसमा भी इन कृतघ्नी प्राणियों को मार के और आप भी पाप का भागी बनकर चला जाएगा। अब क्या बताते हैं अयोध्या दशरथ दो नहीं थे तब रामचंद्र का होते, जब ना श्री राम था ना अयोध्या थी, दशरथ भी नहीं था, तो तब किसकी, सतयुग में भी तो कोई भगवान की आस्था थी, वो तब कहां के साधना करा करते। अयोध्या दशरथ दो नहीं थे तब रामचंद्र का होते, सुरनर मुनि सुरनर असुर असुरन की राड मंडी है, तिरगुण दीन है गोते, जद जन में नहीं रामचंद्र राजा तब क्या रटती बाजी, वेद कुरान नहीं जद होते तो क्या पढ़ते पंडित काजी। रामचंद्र से राजा नहीं थे तब किसकी क्या, राम राम इसी राम को जाप करते थे, रामचंद्र का ही जाप करते थे, और वेद कुरान भी नहीं थी तब ये पंडित का जी कैसे किसकी साधना करते थे, कहां से ये ज्ञान लाए। कहने का भाव है कि वेद और कुरानों से तुम्हें ज्ञान हुआ है और उसमें जो लिखा हुआ तुझसे तुम परिचित नहीं हो। शेष महेश गणेश न सिर जे गौरा नहीं गंवारा, ब्रह्मा सावित्री नहीं होते तब कहां थे प्राण अठारा। शेष महेश गणेश न सर्जे ब्रह्मा, शेष महेश गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश की जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी, क्योंकि ये 18 पुराण जो हैं, शिव पुराण में शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण में विष्णु जी की महिमा, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा, तो कहते हैं जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे तो ये पुराण 18 कहां से, इनके जीवन चरित्र ही तो तुम पढ़ रहे हो। शेष महेश गणेश गणेश न सिरजे गौरा नहीं गंवारा, एक नादान कहती है ये ना उत्पन्न हुए थे, और ब्रह्मा सावित्री नहीं होते तब कहां थे प्राण 18। कृष्ण विष्णु कन्वा भगवान ना नो अवतार नहिर नवेला, नाद गंद में खेलन आए आखर फोकट मेला, होती सैंस गोपी का होती 16 सैंस गोपी का, राधा संग पट रानी कहां गए वो कन्वा, खेलत जाकी कहो निशानी। ओ हम सो हम नाजद होते ना अनभय पाठ उचारम, मूल न फूल न तरवर साखा कित से कीन पसारम, पांच तत्व आरम ना होते ना थी त्रिगुण ताखी, अष्ट योग आसन नहीं होते कौन ज्ञान पद भाखी, पूर्ण ब्रह्म बिनानी बिना माया उपजी जासे, ओम ओम मुला इसम जोगनी कर्म मुग्दर फांसे, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए तीन पूत की माई, जाके उदर नाद में आए उल्टी वा परनाई। क्या बताते हैं कि जिन ब्रह्मा विष्णु महेश सिरजे उत्पन्न किए जाए वो तीन पूत की माई, ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा, और फिर उसी दुर्गा ने तीन रूप बना करके सागर में छुप गई, सागर मंथन किया, तीन रूप बनाकर बाहर आई, कहते वही फिर पत्नी रूप में स्वीकार कर ली इन्होंने। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए तीन पूत की माई, जाके उदर नाद से आए उल्टी वा परनाई, त्रिगुण रूप धरा है जोगनी भ्रम बुलाने योगी, निरालम निर्गुण के नाती कीने बेक संयोगी, एक बनावे एक एक खपावे एक करे प्रतपालम, शब्द अतीत सकल से नारा ये सब त्रिगुण ख्यालम, एक बनावे एक तो उत्पत्ति करे, एक सतीथी बनाकर रखे एक मार दे, ये सब तीनों गुणों की ही व्यवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण ही हो रहा है। ना हम जंगम शेख सेवड़ा ना कोई तपस्या नासी, उन मन रहा अनहद रहते परम सुन के वासी, अमर लोक से हम चल आए शब्द हमारा मेला, जनता से गरीब कह रे संतो ये जग फोकट मेला। ये जिसको तुम भगवान माने बैठे यहाँ के सभी किस ब्रह्मांड तक, ये सब फोकट मेला, बनावटी लोग हैं, वस्तुएं हैं, वास्तविक स्थान नहीं, न वास्तविक सुख है, ये वास्तविक प्रभु भी नहीं है, ऐसे परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को शरण में लेकर वीर देव सिंह बघेल का उद्धार किया। बोलो सतगुरु देव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक ने छोड़कर अपनी प्यारी आत्माओं को जगाने के लिए। क्या बताते हैं परमात्मा